राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 10 अक्टूबर 1992 प्रातः लगभग 9 बजे वाराणसी में हुआ। राम
वराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण 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 नारायण। बातों के मन में एक शंका रहती है कि भगवत गीता में कामना के त्याग पर बड़ा जोर दिया है, बहुत विशेष, तो कामना का हम त्याग करेंगे तो हमारा जीवन कैसे रहेगा, किससे चलेगा, क्या खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, बस नहीं उठेंगे, काम नहीं करेंगे, मकान में नहीं रहेंगे, कुछ भी इच्छा नहीं करेंगे, कोई काम नहीं, काम कैसे होगा, कुछ काम भी करें तो पहले इच्छा होती है, इच्छा के बाद प्रवृत्ति होती है, तो काम या इच्छा करेंगे नहीं तो कैसे काम होगा। इस विषय में कुछ बातें कही जाती हैं, आप लोग ध्यान देकर के सुने और जो ठीक न बैठे वो नोट कर रहे हैं, फिर पूछ रहे हैं, फिर विचार कर रहे हैं। एक कामना होती है और एक आवश्यकता होती है, ये दो विभाग है इसमें। साधारण रीति से तो ऐसा मालूम होता है किसे आवश्यकता होती है उसी की दुकामना होती है, उसी की चाहना होती है, हमारे अनावश्यक चीज की चाहना होती ही नहीं, तो आवश्यकता और कामना दो कैसे हुई, तो दो चीज है। संसार की तो कामना है और परमात्मा की आवश्यकता है, आवश्यकता है वो मिटती नहीं है, पूरी होती है, और कामना पूरी कभी नहीं होती, मिटती है, ये दोनों अलग अलग कार्य है। कामना कभी पूरी नहीं होती, न जात काम कामाना उपभेद उप हो गए नशा में थी हमेशा कृष्ण भूएं से, ये पदार्थों के सेवन से और संग्रह से कामना पूरी नहीं होती। मनुष्यों को प्राय दो चीजें रहती है, रुपये पैसे आदि का संग्रह करें और सुख भोगें, ये दो चीजों में रात दिन लगे रहते हैं, जो इनमें लगे रहते हैं वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवद गीता में तो साफ कहा है कि भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता नाम तयापृत चेतसाम व्यवसायत्मे का बुद्धि समाध हो नीति। दूसरे अध्याय के 44वां श्लोक होता है, कहते भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम, सुख भोग में और संग्रह में ऐश्वर्य में जो आ सकते हैं, सुभोग में लगे हुए हैं और ऐसे संग्रह में लगे हुए हैं, और वेद वाणी में लगाया है कि याम इमाम पुष्टता हम वाचम प्रवचन चपि पुष्टता वेद वाद रसा पार्थ नान दस्ती जी वाद न पीछे बढ़ाया है। 41 से 44 तक का 4 श्लोकों का एक प्रकरण है। वह एक तरह व्यवसाय आत्म का बुद्धि एका और बहुत सकारता से बुद्धि अव्यवसायी नाम तो अव्यवसायी वे भोग इसलिए चाहते हैं। तो अव्यवसायी क्या जो निश्चय नहीं किया है, निश्चय क्या अभी आपने सुना तो मानव जन्म प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही प्राप्त हुआ है। चाहे भाई हो चाहे बहन हो, मनुष्य शरीर का प्रयोजन अपना कल्याण करना है, अपना उद्धार कर लेना है। मैंने एक संतों से विलक्षण बात सुनी, लोग कहते हैं कि आरंभ कब से हुई सृष्टि तो अनादि कहते हैं, इनका शास्त्रों में अनादि के सिवाय कोई उत्तर हमें मिला नहीं है। कोई मिला उसे बता दे मेरे को व्याख्यान बाद। वो संत कहने लगे कि ये मनुष्य शरीर से ही आरंभ हुआ है, मनुष्य शरीर से ही अंत होगा। काम करते हैं इसलिए तो स्वरूप होती है ये जन्म मरण परंपरा, और मनुष्य शरीर में ही समाप्त होगी। तो अनादि होने पर भी समाप्ति होने की जगह यहाँ ही है। यहाँ कामना से करेंगे तो यहाँ के किए हुए कर्म स्वर्ग आदि सुख भोग भूमि में और नरक और 84 लक्ष योनि दुख भोग भोगी भूमि में भोगे जाएंगे। किए हुए कर्म मनुष्य जन्म में और इसमें निष्काम भाव से किए जाए और परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए लग जाए तो कल्याण हो जाता है, फिर अनंत जन्म के पाप और पुण्य क्षय होकर के मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, तत्व की प्राप्ति हो जाती है। रामायण में उत्तरकांड में मानस रामायण में आता है सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, तो वहां का भी सबसे दुर्लभ मानुष देही जीव चराचर जातर देही जर असर सब जीव इस मानुष शरीर को चाहते हैं। उसकी मैना कहते हुए कहा कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेने ज्ञान विराग भक्ति सुख लेने ये देही कैसी है, किसे नरक स्वर्ग अपवर्ग और नरक देने वाली स्वर्ग देने वाली मुक्ति देने वाली और ज्ञान और विराग और भक्ति ज्ञान देने वाली वैराग्य देने वाली और भगवान की भक्ति देने वाली। नरक के दो अर्थ कर लेना, स्थान विशेष नरक है एक योनि विशेष नरक है। नरक के दो भाग हो जाते हैं, एक नरकों के कुंड है एक नारकी योनि होती है जन्म मरण में। तो नरक भी सुनाया है मानुष्य में शरीर दुर्लभ है, उस दुर्लभता के वर्णन में आया कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेरी। तो नरक देने वाली ये देही है ये महिमा नहीं है निंदा है, तो इसका तात्पर्य क्या है। नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेरी ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी, तो इस शरीर में आकर सदुपयोग किया जाए तो उद्धार करने वाली है, दुरुपयोग कर नरक देने वाली है। ये सावधानी करने के लिए बताया है कि मनुष्य शरीर मूल है, अब आपको किस तरफ जाना है, भोग भूमि में जाना है मोक्ष भूमि में जाना है, तो परमात्म तत्व की प्राप्ति इसमें होती है, संसार की प्राप्ति भी मनुष्य जन्म के किए हुए कर्मों का फल ही अनेक जन्मों में नरकों में स्वर्ग में आदि में भोगा जाता है। तो मनुष्य जन्म ऐसा है, इसमें जो शुभ काम भी किए जाएं वो कामना से किए जाएंगे तो वो जन्म मरण देने वाले होंगे, निष्काम भाव से किए जाएं तब अंतःकरण की शुद्धि होगी, निर्मलता होगी, परमात्म तत्व की प्राप्ति होगी, मुक्ति होगा, कल्याण होगा, भगवत भक्ति होगी, प्रेम होगा, ये होगा। तो कर्मों को करना है निष्काम भाव से अथवा सकाम भाव से। किसी कर्मों का ऋषि क्यों आया, 14वें अध्याय में आया है कि ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वसा, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा और अधो गच्छन्ति तामसा। कर्मणा सुकृतस्यावु सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु परम दुःखं अज्ञानस्तमसा फलम्। यदा सत्त्व प्रवृत्तेषु प्रलयिनी आदिदेव तदा उत्तम विद्याम लोकाम अमलान प्रतिपद्य से रजसे प्रलयं गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलयनस्तमसि मूढ़ जायते। तो सात्विक ऊपर को जाने जाते हैं, राजसे मध्य में जाते हैं और तामसे पुरुष अधोगति में जाते हैं। उनके कर्म संगीषु जायते लिखा है, रजोगुण के बढ़ने पर जन्म होता है तो कर्म संगी, कर्मों की आसक्ति वाला देश है ये राज्य। तो कर्म कर्म संगी में पैदा होता है, वही कर्म आसक्ति पूर्व किए जाएंगे तो बंधन के कारण हो जाएंगे और निष्काम भाव करके भगवत अर्पण किए जाए तो मुक्ति के कारण बन जाएंगे। तो यहाँ कामना नख रखने से ही कल्याण की प्राप्ति होती है, कामना रखने से पुनर्जन्म के कारण हो जाते हैं सब कर्म। तो पुनर्जन्म कामना रखने से होते हैं। तो अब कामना के विषय में बात ये आई कि कामना हम भोजन भी बिना कामना के, जल भी बिना कामना कैसे करेंगे, निर्वाह भी बिना कैसे होगा, शरीर यात्रा भी से न प्रसिद्धि न कर्मणा, कर्म नहीं करो तो शरीर यात्रा भी नहीं होगी। तो वो कामना बताइए, कामना क्या है कि नाशवान पदार्थों की परिस्थिति की जो चाहना है उसका नाम है कामना। परमात्म तत्व को चाहना करते हैं, तत्व ज्ञान की चाहना को जिज्ञासा कहते हैं, मुमुक्षा कहते हैं, प्रेम पिपासा कहते हैं, वो एक और चीज है कामना। वो है नाशवान की इच्छा का नाम कामना है, अविनाशी तत्व की प्राप्ति की इच्छा उसका नाम काम नहीं है। तो उसकी आवश्यकता है, कामना होती है उसमें स्थूल सूक्ष्म कारण इन शरीरों की प्रधानता को लेकर होती है वो कामना होती है, और स्वयं की जो इच्छा होती है मुक्ति की कल्याण की वो स्वयं की होती है, वो स्वयं की होती है वो है आवश्यकता, और शरीरों को लेकर इच्छा होती है वो थी वो कामना। तो शरीर को लेकर इच्छा नहीं, इच्छा परमात्मा प्राप्ति करनी है, तो फिर खाना पीना आदि कैसे मिलेगा कि ये इच्छा से नहीं मिलते। योग दर्शन में आया है तस् विपाको जात्यायुर्भोग, कर्मों का फल होगा है जन्म आयुर्भोग। तो पहले प्रारब्ध हुआ है, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। पहले प्रारब्ध होता है पीछे जन्म होता है, तो प्रारब्ध के अनुसार आपको सुखदायी दुखदायी परिस्थिति आवेगी, इच्छा करो तो आवेगी, नहीं इच्छा करो तो भी आवेगी। कि बिना इच्छा कैसे हो जाएगा, तो भागवत में आया है कि सुखम इंद्रियम राजन स्वर्गे नरके होगा, इंद्रियों से होने वाला सुख स्वर्ग में भी होता है और नरकों में भी होता है। नरक में बड़ी यातना दी जाए, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, बड़ी घोर यातना, उसको रख दिया जाए तो पीछे वो जुड़ करके शरीर बन जाएगा। क्योंकि जब तक उनके पापों का नाश नहीं हो, जिन पापों को लेकर नरक मिले हैं वे पाप नष्ट नहीं होंगे तब तक मृत्यु नहीं होगी। तो जब तक वो जिन परकामों भोगों को भोगने के लिए, जिन दुखों को भोगने के लिए मिला है, तो वहाँ दुख होता है। तो सुखम इंद्रियम, इंद्रियों से होने वाला जो सुख है वो स्वर्ग में भी होता है, नरक में भी होता है। स्वर्ग में भी भोग भूमि है, तो सुख नरकों में, तो दुख नरकों में भी। स्वर्ग में भी सुख और दुख ईर्ष्या आदि होते हैं, इंद्र को भी कितने दुख हुए भागते फिरे हैं। तो स्वर्ग में भी दुख और सुख दोनों होते हैं, नरकों में भी सुख और दुख दोनों होते हैं। बोलते हैं उनमें स्वर्ग में सुखों की प्रधानता है, नरकों में दुखों की प्रधानता है। पर इंद्रियों से होने वाला सुख स्वर्ग में भी होता है, दुखों नरकों में भी होता है। तो सुखम इंद्रियम राजन, स्वर्गे नरक ये होगा प्राण नाम तद यथा दुखम। कैसे होता है विनाशा के प्राण नाम तद यथा दुखम। जैसे प्राणियों को दुखदायी परिस्थिति की प्राप्ति होती है, तो क्या दुखदायी परिस्थिति के लिए कोई इच्छा करता है? अरे कोई उद्योग करता है, अरे इच्छा ही नहीं करते उद्योग कौन करेगा? ऐसा नहीं भाई क्या करें, दो वर्ष हुए बुखार आया नहीं, वैद्य कोई दवाई दीजिए बुखार आ जाए, ऐसी कोई इच्छा करता है? कोई दवाई लेता है उद्योग कर नहीं करता। तो जैसे बिना चाहे दुखदायी परिस्थिति, बीमारी आदि, धन का नाश, पुत्र का नाश आदि की दुखदायी परिस्थिति बिना चाहे होती है, प्राण नाम से जैसा दुखम, वैसे सुख भी बिना चाहे आएगा। तस्मान ने से तत्बुधा, तो विवेकी को चाहिए कि सांसारिक सुख की इच्छा न करे। इंद्र से होने वाला सुख तो स्वर्ग में नरक में सुख मिलता है, बिना इच्छा मिलता है। तो दुखदायी परिस्थिति के लिए ना इच्छा करनी पड़ती है, ना पुरुषार्थ उद्योग करना पड़ता है, फिर भी दुखदायी परिस्थिति आती है। ऐसे हमारे किए हुए कर्मों के फल रूप से सुखदायी परिस्थिति भी आवेगी, आवेगी अनिवार्य है। वो तो अगर हम दिन रात की बात लगाए, रात और दिन, दिन में रात, रात में, ऐसे अनुकूलता प्रतिकूलता आती रहती है। तो एक इच्छा न करे, ये पहले प्राप्त करके भगवान ने मानव से ही दिया, तुम खाने पीने की चिंता मत करो, तुम तो भगवान के दूर हो। वर्णाश्रम के अनुसार उद्योग करने की इच्छा कही है, भिक्षु कहे तो भिक्षा के लिए चला जाए, वहां से मिल जाए उसे हम निर्वाह कर दे। दत्तात्रेय जी महाराज ने कहा है, दिष्ट भुक्त तुष्ट ही राम, जो भाग्य से मिल जाए बस कैसा ही भोजन देता हूँ तुष्ट थी। तो वो जैसा प्राप्त करेगा वैसा मिलेगा, बढ़िया भी मिल जाएगा, घसिया भी मिल जाएगा, निर्वाह होगा। निर्वाह के लिए प्राप्त पहले से रचा हुआ है, तो निर्वाह की इच्छा करने की जरूरत नहीं। शरीर के लिए निर्वाह होता है तो शरीर की चेष्टा करो, इच्छा भीतर से होती है, चेष्टा शरीर से होती है। तो शरीर के लिए इच्छा चाहिए तो उसके लिए भोजन के लिए उद्योग करो। जब उद्योग लग नहीं थे बचपन में, तो उस समय में भोजन मिलता था, कपड़ा मिलता था, रहने की जगह मिलती थी। योगी हो गए तो अब काम करो, उस काम करने से जो मिल जाए उस अपना निर्वाह करो। फिर बूढ़े हो जाएंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे, तो उस समय वही भोजन मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, रहने का स्थान मिलेगा। कुछ को सुख गुरु, किसी को दुख गुरु, तो ये प्राप्ति के अनुसार मिलेगा, निर्वाह होगा। जितना दिन जीना है उतना दिन जीना होगा। तो इसकी इच्छा नहीं करनी चाहिए। ये इच्छा का तात्पर्य सुख भोग और संग्रह के लिए इच्छा नहीं करनी चाहिए। ये इच्छा करने से क्या होता है कि भोगे ईश्वरीय प्रसक्ता नाम, भोग और ऐश्वर्य में जो आ सकते है वे परमात्मा की प्राप्ति का निर्णय भी नहीं कर सकते, निश्चय भी नहीं कर सकते कि हमें परमात्मा की प्राप्ति ही करना है। तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, भगवत भक्ति प्राप्त करना है, भगवान से प्रेम हो जाए ये करना है। ये चीज आवश्यकता, ये कामना नहीं है। आवश्यकता पूरी होती है, कामना तो जिम्पेगा लोभ अधिकारी हमेशा कृष्ण वर्ष में वो भूया भी वर्धत, वो तो वर्धती है इच्छा। जिम्पेगा लोभ अधिकारी वो तो अधिक बढ़ती है। आविश्वरता पूछे, चाहे तत्व की प्राप्ति हो जाए, चाहे भगवत दर्शन भगवत प्रेम प्राप्त हो जाए, तो वहां समाप्ति हो जाती है। आवश्यकता है उसकी, जैसे पेट में भूख लगी तो पेट के लिए ये नहीं बढ़िया घटिया साग पत्ती खा तो भर जाएगा, हलवा पूरी खा तो भर जाएगा, तो इसमें केवल पेट भर जाना है इसकी आवश्यकता है, परंतु जगह तरह का भोजन मिल जाए वो मिल जाए वो लेना चाहिए ऐसा नहीं है। इस बात से पूज्य श्री शंकराचार्य महाराज ने कहा है कि खुद व्याधि से चिकित्सताम प्रतिदिनम, रोजाना भूख रूपी रोग की दवाई करना चाहिए। क्या करें मतलब कि विषौषधम भुज्यता, भिक्षा रूपी औषध खाओ, कि भिक्षा रूपी औषध लेना है। साधन में न तो याच्यता विधि वसात प्राप्त संतुष्यता, साधु और नहीं किसान की भले भूजे वो चाहिए मैं वो चाहिए नहीं, विधि प्रसाद प्राप्त संतोष प्राप्त संतोष हूँ, ये दत्तात्रेय जी महाराज ने कहा। तो जैसा मिल जाए उसमें संतोष करो, तो सांसारिक भोगों में संतोष की मुख्यता है, तो साधन कर्म में संतोष नहीं करना चाहिए। संतोष है त्रिशु कर्तव्य है, स्वधारे भोजने धने, और त्रिशु नहीं उस कर्तव्य है स्वाध्याय जप दान योग। अपना परिवार जैसा मिल गया है, जितना धन मिल गया है, दिव्य मिल गया है, और जैसे शरीर मिल गया है, भोजन मिल गया है, तो ये स्वधारे भोजने धने इनमें तो संतोष करो, और तीनों में स्वाध्याय जप दान, स्वाध्याय में जप दान में साधन करने में संतोष मत करो। अर्थ क्या हुआ कि पूर्व प्राप्त से जो प्राप्त हो वस्तु उसमें तो संतोष करो, और नया उद्योग पुरुषार्थ जो अपने परमात्मा की प्राप्ति के लिए है उसमें संतोष मत करो। इतना जप हो गया, इतना स्वाध्याय हो गया, इतना सत्संग हो गया, इतना विचार कर लिया है, अब समाप्त करें, ऐसा न करें। इसमें तो रात दिन लोगों की उसके लिए मानव शरीर मिला है, मनुष्य शरीर का उद्देश्य परमात्म तत्व की प्राप्ति है, तो उसके लिए उद्योग करो, खूब परिश्रम करो, पुरुषार्थ करो, विचार करो, चिंतन करो, भगवान को याद करो, ये सब है। तो पुरुषार्थ को लगाना चाहिए परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए, इसकी इच्छा करो तो मुमुक्षा पहले होती है फिर मुक्ति होती है, जिज्ञासा पहले होती है फिर ज्ञान होता है, प्रेम की पिपासा भगवान प्रेम हो जाए इच्छा होती है, भगवत दर्शन की इच्छा होती है तो फिर दर्शन होते हैं। तो ये कामना नहीं है, परमात्म तत्व की प्राप्ति की इच्छा वो कामना नहीं है, वो तो आवश्यकता है। जैसे पेट के लिए आवश्यकता है खाद्य पदार्थ की, और अमुक अमुक चीज मिले बढ़िया मिले, ये मीठा मिले ये मिले, ये चीज है इच्छा की, ये कामना नहीं है, ये कामना है अमुक अमुक वस्तु मिले। पेट नहीं कह रहे, पेट तो ठीक तरह से आयुर्वेद की दृष्टि से और धर्मशास्त्र की दृष्टि से जो उचित हो वो भोजन, हित परिमित भोजी, नित्य में एकांत सेवी, सकल सिद्ध होते, स्वल्प निद्रा विहार, अन्य मनशीलो यो भजत युक्त काले सलभत यह शीघ्र साधु चित्त प्रसादम। तो वो ठीक रहे संयम पूर्वक युक्त आहार विहार से युग श्रेष्ठ से कर्मसु युक्त स्वप्न बोध से योगो बहुत ही दुखों का विनाश करने वाला योग सिद्ध होता है। तो उस योग के लिए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, हृदय योग, मंत्र योग, राजयोग, तप योग, अनाशक्ति योग, योग कई है जो परमात्मा के साथ संबंध जोड़े वो योग होता है, और संसार के साथ संबंध वो संयोग है। दुख संयोग वियोगम योग संत, दुख के संयोग से वियोग होता है वो योग होता है। तो योग की प्राप्ति के लिए उद्योग करो, संयोग भोग की प्राप्ति के लिए नहीं, क्योंकि भोग है उससे स्वभाव बिगड़ेगा, पुराने पुण्य नष्ट होंगे, जितना सुख भोगोगे तो पुण्य नष्ट हो जाएगा, और आदत बिगड़ जाएगी, स्वभाव बिगड़ जाएगा और प्रतंत्र हो जाओगे। इस वास्ते वो इच्छा नहीं करनी, कामना है ना, अर्थ धर्म काम मोक्ष, तो काम में अर्थ भी काम में आकर नष्ट हो जाता है और धर्म भी काम में आकर नष्ट हो जाता है। धर्म की भी कामना की जाए, स्वर्ग आदि की भोगों की इच्छा की जाए, धर्म किया जाए तो धर्म भी कामना में कामना कोई भोग नष्ट हो जाएगा। तो ये कामना है सबका अर्थ का विनाशक, जितना भोगों में धन लगा गया धन नष्ट हो जाएगा, और धन धर्म में लगाया तो धर्म का सुख भोग तो धर्म का नाश, तो अर्थ धर्म दोनों का नाश काम है। काम न करके इच्छा परमात्मा की ओर से मोक्ष हो जाएगा, अर्थ धर्म काम मोक्ष परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। इस वास्ते इच्छा करना है तो परमात्मा की, उद्योग करना है परमात्मा तत्व के जीव के कल्याण की। ये इच्छा इच्छा नहीं है, कामना कामना नहीं है, ये आवश्यकता है, बहुत जरूरी बात है ये, और वो करने से पूरी होती है। कामना तो धन की करते हैं, व्यापार करने जाते हैं, घाटा लग जाता है, पर परमात्मा की प्राप्ति के लिए सच्चे हृदय से लोगो घाटा इसमें लगता ही नहीं। अर्जुन ने पूछा है कि महाराज अयति ही श्रद्धयोगे तो योगा चरित मानस, अंत में अंत समय में योग से चरित मना हो जाए तो अपराध योग संसिद्धि, योग संसिद्धि को तो प्राप्त नहीं होगा। काम सिद्धि काम गति कृष्ण लोग किस गति को जाता है, क्या नष्ट हो जाता है? जैसे बदल से टुकड़ गई, बदल आप से बदल में जाने के लिए तरह बीच में संघन हो जाता है, ऐसे ही उसने संसार की तो कामना छोड़ दी और परमात्मा तत्व की प्राप्ति के मार्ग में लगा और उसने चरित मना हो गया, अंत में मन रहा नहीं, अंत में स्मरण हो तो अंत काल में वो स्मरण भूतवा करे वरम यह प्रयासी समुद्भाव या थी नास्ते तो संशय, अंत में स्मरण हो तो कल्याण हो जाए, परंतु अंत में वहां से योग से चरित मना हो गया, संसार का सुख वो चाहता नहीं, स्वर्ग ये चाहता नहीं, तो क्या दृष्टि होती है उसकी, ऐसे अर्जुन पूछा। तो भगवान ने कहा कि दो तरह के साधक होते हैं, ये साधन से चरित मना होता है तब योग भ्रष्ट होता है, तो योग भ्रष्ट होते हैं उनके दो दशा, दो तरह के साधक होते हैं। एक साधक वो जिनको सत्य हृदय से वैराग्य हो गया है, भजन में लगता है, किसी कारण प्रसाद किसी कुसंग से अंत में चरित मना हो जाए, एक वो साधक हो रहा है। एक साधक है साधन की महिमा सुनकर मनुष्य की सफलता परमात्मा की प्राप्ति में है ऐसे विचार कर साधन में लगा है, एक तो वैराग्यवान है साधन में लगा हुआ, एक का राग तो रहा है परंतु अपने विचार के द्वारा राग को रोक करके परमात्मा की प्राप्ति में लगा है। दो तरह के साधक होते हैं, तो जो परमात्मा की प्राप्ति में लगे हैं और उनके भीतर में भोगों की कामना रही है तो वो स्वर्ग में जाता है, प्राप्त पुण्यताम लोकान पुण्यकारी लोगों जाता है, और उसी तरह शाश्वती सुमा बहुत वर्षों तक वहाँ रहता है, और वो पुण्य जिन पुण्यों से स्वर्ग मिला वे पुण्य के सुख भोग करने के बाद फिर तीसरा सुची नाम श्रीमतांगे है योग भ्रष्ट हो जाए थे, योग भ्रष्ट होता है वो शुद्ध श्रीमान को गर्भ जन्म देता है तो उसको स्वर्ग जाना पड़ता है, अथवा योगी नाम कुल भौतिक ही मताम और जिसके भोग इच्छा नहीं है वैराग्य है तेजी का भजन में लगा योग, वो अगर योग भ्रष्ट हो जाए तो योगियों के कुल में तत्वज्ञ पुरुष होते जैसे जनकादि वो तत्वज्ञ पुरुषों के घर में वही धन बने साथ सब सुविधा मिलती है और फिर जैसे तो भूया सरसिंह फिर करता है परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। और वो शुद्ध श्रीमान को घर में जन्म लेने वाले के लिए भी कहा है पूर्व ही है तेरे पूर्वाभ्यास जीते जबसो भी जावस होता हुआ भी परमात्मा की तरफ खिंचता है, क्योंकि जिज्ञासु भी योग शब्द ब्रह्मा की बदते योग का जिज्ञासु होता है वो भी शब्द ब्रह्म को अतिक्रमण कर जाता है, वेदों को अतिक्रमण कर जाता है, वेदों में कहे हुए थे जितने पुण्य फल है उनको अतिक्रमण कर जाता है, तो योग भ्रष्ट हुआ है तो योग में लगा है कुछ योग का अनुष्ठान किया है अंत में विचलित हो गया तो वो तो फिर तत्वाचार्य भगवान में लगता है, तो श्रीमानंद घर में रहने वाला पुरुष भी, जन्म लेने वाला भी अगर साधन में लग जाता है। और ये मेरा क्यों है, वो तो श्रीमानंद वो तो योगियों के कुल में जन्म होता है, तो उसको तो अनायास ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए लग जाता है। तो पहले इच्छा न रखे, पर इच्छा अंत में भी हो जाए तो वो जन्म लेने का कारण हो जाती है। तो कामना है वो इसका पसंद करने वाली चीज है, तो कामना का त्याग करके भजन स्मरण सब करना चाहिए, सब संकरण चाहिए। निष्काम भाव से तो दान है, तप है, तीर्थ है, व्रत है, उपवास है, ये भी निष्काम भाव से किया जाए तो कल्याण करने वाले होते हैं। अगर भजन स्मरण भगवान का किया जाए तो भी कहना ही क्या है। निष्काम कर्मानुष्ठानम त्यागात काम्य निषिद्ध, काम और काम्य और निषिद्ध दो कर्मों का त्याग करके निष्काम भाव से कर्मानुष्ठान। निष्काम कर्मानुष्ठानम त्यागात काम्य निषिद्ध तत्रापि परमो धर्म जपस्तु त्यागि हरि। भगवान के नाम का जप, स्तुति, प्रार्थना, भगवान की लीला कथा सुनना कहना, ये परम धर्म, ये दान पुण्य तीर्थ व्रत आदि की धर्म बताया है। और परमात्मा की तरफ लगाना जब दान कर जी तथा भी परमो धर्म जपस्त्यादि हरे, भगवान का नाम का जप करना, स्तुति करना, प्रार्थना करना, भगवान के गुणानुवाद सुनना कहना, विचार करना, पढ़ना, ये है परम धर्म, ये करो कल्याण हो जाएगा। तो इच्छा परमात्मा प्राप्ति की इच्छा वो कामना नहीं है, संसार की सुखों की कामना वो कामना है। तो कामना बंधन करने वाली होती है, निष्काम भाव होता है, और भगवान की तरफ चलते हैं उसका कल्याण होता है जल्दी। गीता में आया है जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति, जरा मरण से मुक्ति पाने के लिए मेरा आश्रय लेकर जो कर्म करते हैं, भगवान के चरणों का आश्रय लेकर कर्म करते हैं, ते ब्रह्म तद्विदु, वो सब ब्रह्म को जान जाते हैं, कर्म जान जाते हैं, अध्यात्म जान जाते हैं, अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ के सहित मेरे को जानते हैं, अंत में मेरे को प्राप्त होते हैं। ये सातवें अध्याय 29 और 30 दो श्लोकों में भगवान ने कहा मेरा आश्रय लेकर चरण करते हैं, मेरा आश्रय ले, तो भगवान के चरणों का आश्रय लेकर चले। धावन निमिल ने नष्टे न पते लिह, ऐसा ऐसा निष्कंठ का पन था, भगवान की तरफ चलने का मार्ग बड़ा प्रशस्त निष्कंठ का पन था। ये तो संपूज्य थे हरि, ऐसा निष्कंठ, इसमें जैसे रास्ता साफ हो, आंख बीच कर दौड़ते कोई जाखड़ता है न पड़ता है, ऐसे धावन नहीं देवाने से न स्खले न पते लिया, यहाँ पसंद नहीं होता, उद्धार होता है। तो उद्देश्य परमात्मा का प्राप्त है, ये भोगों का और धन का जो उद्देश्य है ये गलती है, वो साधन में आगे नहीं चलता। व्यवसाय आत्मा वृद्धि समाज न विधि यते, परमात्मा तत्व की प्राप्ति करने का निश्चय भी उनके नहीं हो सकता, उसका एक निश्चय हो नहीं सकता कि अब हम कल्याण ही करेंगे, क्यों भोग से ये पुष्पित वाणी है, वहाँ स्वर्ग मिलेगा और वहाँ बढ़िया अवसराएं है, वहाँ नंदन वन है, अमृत का भोजन है, बड़ी ये पुष्पित वचन है, पुष्प होते हैं केवल फूल, फूल फल कुछ नहीं, फल नाशवान, ऐसा चलने वाले पसंद को प्राप्त होते। इस वास्ते कामना संसार की कामना है, स्वर्ग आदि की कामना है, यहाँ धन ऐश्वर्य की कामना है, यहाँ सुख भोग की कामना है, यहाँ मान सत्कार की कामना है, बड़ाई कीर्ति की वाह वाह की कामना है, मेरा संसार में नाम रहे, मर जाऊं तो भी मेरे नाम रहे, मेरा से ये मारवाड़ी भाषा में आया है जोधपुर में, जोधपुर भाषा में गीतरा और भीतरा, तो हम कोई पुस्तक लिख दें जैसे हमारा नाम हो जाए, नहीं तो मकान बना दें, स्मारक बनाए दें, जो देख कर हमारा स्मरण होता रहे। तो मरने के बाद भी कीर्ति चाहता है मनुष्य, यश चाहता है, मान चाहता है, मेरा नाम हो जाए चाहता है, तो ये सब पसंद करने वाली है। ये कामना कामना है, इसके त्याग की बात कही है। निर्वाह मात्र के कामना नहीं है, वो निर्वाह मात्र तो भाग्य से मिलेगा, उसकी कामना करो तो मिलेगा, न करो तो मिलेगा। अरे कामना करके अधिक धनवान हो जाए ऐसी बात नहीं है, ये प्रत्यक्ष बात भी है। अब ध्यान देंगे सुने थोड़ा सा, ये केवल शास्त्रों की बात नहीं है, शास्त्रों की बात तो है ही, मूल तो शास्त्र ही है, तस्मात शास्त्रम प्रमाणते कार्याकार व्यवस्थित हो, परंतु हमारे व्यवहार में देखने भी जाती है। संत महात्मा आप लोग गुरुजन क्या कहते हैं, तुम भजन स्मरण करो, संध्या गायत्री करो, भी अपने अधिकार के अनुसार तुम संध्या करो, गायत्री करो, पुस्तक पढ़ो, स्वाध्याय करो, जप करो, कीर्तन करो, प्राणायाम करो, तीर्थ प्रसादी करो। इसके लिए नियम लेने का बात कहते, तुम नियम लो, इतना हम करेंगे, रोजाना इतना काम करो, आ संध्या पर रोजाना संध्या करो, तुम ऐसा नियम लो। तो संध्या के लिए कहते हैं, धर्म के लिए है भाई, तुम दान करो, पुण्य करो, व्रत करो, भोजन करो, तो स्नान करके भगवान के भोग लगा खाया करो, ऐसे नियम लेते हैं। पर भोग भोगने का नियम कोई नहीं रहता, क्यों इतने भोग भोगो, हम बढ़िया माल ही खाएंगे, रोजाना ये भोग भोगेंगे, ऐसा नियम कोई नहीं रहता। इस तरह से धन का नियम कोई नहीं रहता, रोजाना इतनी माला जपो, कहते हैं तुम 5 रुपये तुम पैदा करो, रोजाना नियम लो कि 5 रुपये रोजाना पैदा करेंगे, ये नियम नहीं देते। क्यों नहीं देते कि धन पैदा करना और बढ़िया भोजन ऐसा सुख भोगना ये प्रारब्ध का काम है, अभी उद्योग का काम नहीं है, और परमात्म तत्व को प्राप्त करना और धर्म का अनुष्ठान करना इसके लिए नियम दिए जाते हैं। ऐसे करो भाई, तुम अपना वर्ण है वो आश्रम है उसके अनुसार शास्त्र भेद काम करो, कहते हैं ऐसा। क्या हमारे वर्ण आश्रम के अनुसार काम करना आवश्यक है? जरूर आवश्यक है। तो क्या धन आवश्यक नहीं है? वर्ण आश्रम के अनुसार कर्म करना आवश्यक है, धन क्या आवश्यक? धन तो बहुत आवश्यक है, रोटी कपड़ा मकान हमारे इसी से ही मिलता है, तो फिर धन के लिए नियम लो, धन के लिए नियम चलता नहीं। क्यों? धन की प्राप्ति में प्रारब्ध की मुख्यता है, अभी की इच्छा और उद्योग कर्म काम का मुख्य नहीं है, वो तो जैसा आपके गुणा वैसे करेगा, तो गुणा ही वैसे करते, फिर उसमें उद्योग क्यों करें? उद्योग नहीं करोगे तो मनुष्य जन्म सफल ही नहीं होगा। मनुष्य जन्म में कर्मण्य अधिकार से माँ फले सुकराचना, गीता कहता है कर्तव्य कर्म के करने में अधिकार है, फलेशु कदाचन वहां कभी नहीं, फल इतना प्राप्त करना ये आखिरी बात नहीं है, कर्तव्य कर्म जरूर करें। अपना जो शास्त्र विधि वर्ण आश्रम के अनुसार व्यक्ति स्त्री पुरुष के अनुसार उनके लिए जो शास्त्र ने आज्ञा दी है उसी तरह करें। पहले में कहेंगे बालकपन में बिना किए मिलता रहा, वृद्धावस्था में बिना किए मिलता, बीच की अवस्था में करने लायक हो गए तो काम करो फिर मिलेगा, तो काम करो। कैसे प्रार्थ भाई क्या हुआ, हम काम करें न करें प्रार्थ के अनुसार मिलेगा, वो तो एक कर्म का असर मिलेगा पर दुख पाना पड़ेगा, कर्तव्य च्युत हो गए ना, कर्तव्य नहीं पालन करोगे तो कष्ट से मिलेगा, मिलेगा जरूर जीते रहोगे, परंतु अगर ही क्या काम का क्या होगा दशा, आगे दशा बुरी दशा हो जाएगी, इस वास्ते कर्तव्य कर्म करना है अपने कर्म ये होते से। शरीर यात्रा में अभी कह कर आया हूँ, बिना कर्म किए शरीर यात्रा भी नहीं, भोजन नहीं करोगे तो कैसे तुम निर्वाह होगा, तो ये काम करना है, तो निर्वाह के लिए शास्त्र की आज्ञा के अनुसार वर्ण आश्रम के अनुसार चेष्टा करो, ये कर्म करो। प्रारब्ध का जो कहना है ये भी एक विशेष ध्यान देने की बात है, आप ध्यान से सुने। प्रारब्ध कर्म के वर्णन का तात्पर्य चिंता रहित होने में, कर्तव्य रहित होने में नहीं, खास बात है। प्रारब्ध से मिल जाएगा, हम काम क्यों करें बैठे, मिल जाएगा तो मिल तो जाएगा, परंतु वास्तव में प्रारब्ध का तात्पर्य ये नहीं कर्तव्य कर्म न करो, निकम में बैठे रहो, काम मत करो, ये नहीं है। उसका कारण है चिंता मत करो। जैसे भाग्य वैसा मिले, काम तो करो रात दिन, तस्माद असक्त सततं कार्यं कर्म समाचर। गीता कैसी है, आसक्ति रहित होकर निरंतर कर्तव्य कर्म में सम्यक प्रकार से लगे रहो, अच्छी तरह से लगे रहो। अशुक्त हो यात्रा कर्म, आसक्ति रहित कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो कर्तव्य कर्म करना आवश्यक है। कर्तव्य कर्म के लिए निषेध करने के लिए प्राप्त का तात्पर्य नहीं है, प्राप्त का तात्पर्य चिंता दूर करना। चिंता नहीं करो, चिंता क्यों करो, उस प्राप्त उतना ही मिलेगा भाई, उद्योग करो उतना ही मिलेगा। समुद्र में मील दो मील नीचे पानी भरोगे तो लोटा जितना उतना ही पानी आएगा, अगर ऊपर से भरोगे तो कुंजे से भरोगे उतना ही आएगा, उसमें उतना ही आएगा आजेगा। ऐसे प्राप्ति के अनुसार काम होगा। हमने देखा है सड़कों पर कंकर ढोते हैं, उनको जो पैसे मिलते हैं वही पैसे टकसाल थी कलकत्ता में, उस समय रुपए और गिन्ने और मोहरे बनती थी, वो कारखाना था तो सोने और चांदी, और दिन भर लोग वो ढोते थे तो कंकर ढोने वालों को पैसा उतना ही मिलता है, दिन भर सोना ढोने वालों को मिलता है। चांदी दिन भर ढोते हैं, रुपयों को इधर लग गया उधर लग गया ढोते हैं तो उनको पैसे उतने ही मिलते हैं, चाहे कंकर ढो पत्थर ढो और चाहे कोयला ढो। अब सोना ढोते हैं हमारे पैसा अधिक मिलते हैं, नहीं मिलेगा तुम्हारी मेहनत उतना ही मिलेगा। ऐसे मिलने में संसार की चीजें दिखने में बहुत भी दिखेगी, मगर तुम्हारे तो भाग्य के अनुसार ही मिलेगा, जैसा मिलना उतना ही मिलेगा। अच्छी विरोधी परिस्थिति तरह तरह की आती है, पर सुख दुख बरोबर होगा। सुख दुख में भी एक मार्मिक बात, जैसे ये मार्मिक बात बताई इस जैसे सुख दुख में भी एक बड़ी मार्मिक बात है। मैं मार्मिक बात वो कहता हूँ कि जिसका वर्णन विशेष नहीं आता, थोड़ा आता है, हर एक का ध्यान नहीं जाता है शास्त्रों में, तो वो क्या है कि जो कर्म का फल है वो फल सुखदायी दुखदायी परिस्थिति का आना है, सुखी दुखी करना नहीं है। ये खूब सेंस ठीक गहरी समझने की बात है। हम सुखी और दुखी होते हैं उसका कारण प्रार्थ नहीं है, सुखी दुखी होते हैं इसमें कारण है मूर्खता बेसमझी, और परिस्थिति आती है वो कर्मों का फल है। क्योंकि कर्म जो हम बाहर से करते हैं उन कर्मों से वह परिस्थिति बनती है, तो परिस्थिति सुखदायी दुखदायी आवेगी, पर दुख होना सुख होने ये बात नहीं है। आपने सुना ही होगा, आपसे अपरिचित बात नहीं है, नारद जी महाराज अपनी बात कहने लगे व्यास जी को, व्यास जी व्याकुल हो गए। नारद जी ने कहा व्याकुल क्यों होते हो, कि हमें शांति नहीं है, कि हमने महाभारत की लड़ाई का वर्णन किया है, शांति थोड़ी होगी, भगवान के गुणानुवाद कहो शांति हो जाएगी। उसमें नारद जी ने अपने जन्म की कथा कही है, मैं दासी पुत्र था, दास्यास्तु कश्चन वेदवादी नाम, मैं एक दासी पुत्र था, संत आए चातुर्मास में उनकी सेवा के लिए, सूर धनी ने मेरी माँ को लगा दिया कि भाई इनके बाहर की सेवा करना, चल बना आज तुम काम करो, तो मेरी का माँ काम करती थी और मैं बालक था, मैं तो सास में रहता, मैं कहाँ जाऊँ, तो ऐसी सेवा करने लगी तो कर दी थी वो। फिर मैं तो छोड़कर खेल कूद छोड़कर मैं भी सत्संग बैठता और कथा सुनता था, तो संतों ने कृपा करी मेरे पर, मेरी रुचि हो गई इधर, देवी योग से क्या हुआ, माँ गाय दूने को जाती थी वहां सांप काट गया और माँ मर गई। तो प्रारब्ध कर्म ने माता का वियोग कर दिया, पाप फल हुआ जो माँ मर गई, बच्चे की माँ मर जाती और क्या आश्रय कुछ नहीं, आधार माँ ही होती है। वो मर गई, परंतु माँ के मरने से नारद जी खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, नाचने लगे। प्रार्थ का फल माँ का मारना है, दुखी करना नहीं है। दुखी नहीं है, सुखी हुए। कहते वो माँ तंग करती, आधे बेटा रोटी खा ले, ये कर ले, काम कर ले, मैं देखू भजन करूं, भगवान में लग जाऊं। तो ऐसी खुला होने से फिर मैं जंगल में निकल गया, वहां धरने पर जल पिया, वृक्ष नीचे बैठा, ध्यान लग गया, भगवान का ध्यान लग गया, रुचि हो गई। इस कारण से वो संत कृपा करके मेरे को यार मेरे पर चक्रु कृपा यदि भी तुल्य दर्शना, संत महात्मा समदृष्टि वाले होते हैं, परंतु मेरे पर विशेष कृपा की, अद्भुत किरण की अनुभूति ने। संत कहते जैसे मैं चलता था और खेल कूद छोड़कर सत्संग करता था तो धन कमाने वाला धन कमा कर कमाना छोड़कर सत्संग करे तो संतों पर असर पड़ता है। ऐसे बच्चा खेल कूद छोड़कर सत्संग करे तो असर पड़ता है। अबे तुम्हारा धन का लोभ है, जैसे बचपन खेलने का लोभ होता है, तुम वो न खेल कर सत्संग करते। इसने कृपा की, संतों ने मेरे को मंत्र दिया, बताया, जिसके अनुसार जार जंग गया, भगवान का ध्यान लग गया, खुशी हो गई। फिर मैं व्याकुल हुआ तो आकाशवाणी हुई कि मैं दुर्दोष हूँ, हम कुयोगी नाम अभी दर्शन नहीं होंगे, तुम भजन करो। फिर ब्रह्मा के पुत्र हो गया, ऐसा हुआ। तो यहाँ कहने का इतना ही तात्पर्य था कि माता मर गई तो माँ के मरने से दुखी होना चाहिए, तो नारद जी दुखी नहीं हुए। प्राप्त का कर्म दुखदायी परिस्थिति है, पुण्य कर्म का फल सुखदायी परिस्थिति है। ये दुख होना, जलन होना, ये तो अज्ञान का फल है, ये मूर्खता का फल है। मूर्खता ही मिटाई जा सकती है, प्राप्त नहीं मिटाया जा सकता। प्राप्त के अनुसार घटना तो घटेगी, हम सुखी होंगे दुखी होंगे। हमारे दिव्य आदि पास में चीजें होगी, प्राप्त से मिलती है, उनको अगर हम अच्छे काम में दूसरों की सेवा में लगाएं तो पुण्य हो जाएगा। तो सुखदायी परिस्थिति आती है सेवा करने के लिए और दुखदायी परिस्थिति आती है सहन करने के लिए, प्रतीक्षा के लिए, सुख की इच्छा का त्याग करने के लिए दुखदायी परिस्थिति। तो दोनों साधन है, सुखदायी परिस्थिति भी परमात्मा की प्राप्ति में साधन है और सुखदायी परिस्थिति भी परमात्मा की प्राप्ति में साधन है। सुख दोनों उनका सदुपयोग किया जाए तो सुखदायी परिस्थिति में ही भजन होता हो, ऐसी बात नहीं है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि भाई सुखदायी में तो भजन होता है, जब आपत आ जाती है हम भगवान को भूल जाते हैं। कई ऐसा कहते हैं, कई ऐसा भी कहते हैं कि जब आपत होती है भजन अच्छा बनता है, सब तरह से तिरस्कार होता है, अपमान होता है, बीमारी आ जाती है, भगवान की विशेष स्मृति होती है, विशेष याद होता है। तो दोनों प्रकृतियां अलग अलग है, परंतु वास्तव में दुखदायी परिस्थिति कोई भजन बंद करने के लिए नहीं आती है, भजन की तेजी बढ़ाने के लिए आती है। सुखदायी परिस्थिति भजन करने के लिए आती है। घर के सब मर जाए तो बेटा भजन ध्यान निकला करो, और घर परिवार बढ़ गया तो सब मिलकर कीर्तन करो, परमात्मा की प्राप्ति मौज से कीर्तन करो। सब तुम बहुत बार बच्चे छोटे बड़े बहुत से हैं तो सब मिलकर नाचो कीर्तन करो भगवान के नाम का। तो सुखदायी दुखदायी परिस्थिति साधन सामग्री है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन का धाम है, मुक्ति का दरवाजा है। साधन धाम है सुखदायी परिस्थिति की साधन सामग्री, दुखदायी परिस्थिति की साधन सामग्री, उसे परमात्म तत्व की प्राप्ति करो। तो दुखदायी परिस्थिति दूर हो जाए कामने की, भोग लो, ये तो भोगने से दूर हो जाएगी, आप साहब ही सुख भोगने का अवसर भी समाप्त हो जाएगा, दुख भोगने का समाप्त हो जाएगा, ये तो मिटेगा ही। इस वास्ते ये भोग लो, इनके लिए चिंता मत करो और सुखी दुख मत हो। ये सुख दुख होने लगी है, यही तनु कर फल विषय भाई, इस शरीर का फल सुख दुख भोग नहीं है, ये तो परमात्मा की प्राप्ति है। सुख भोगना तो स्वर्ग में जाओ, दुख भोगना नरकों में, चौरस धोनी में जाओ, और दोनों से ऊंचा उठना हो तो मनुष्य शरीर में। तो मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। प्राप्ति की इच्छा करना, उद्योग करना, सत्संग करना, स्वाध्याय करना, विचार करना, तत्व के गहरे उतर करके सोचना समझना, इसके लिए मानव शरीर है, सुख भोग के लिए नहीं है। सुख भोग तो और भी हो जाएगा, इन मनुष्य ना तो ज्यादा सुख सह सकता ना दुख सह सकता। ज्यादा दुख होगा तो प्राण निकल जाएंगे, नार की जीव के प्राण नहीं निकलते। तेल उबलते हुए तेल में डाल दिया जाए प्राणी को तो तेल में पकता रहेगा, प्राण नहीं निकलेंगे। अब मनुष्य को देखा जाए मर जाएगा ये। ऐसे किसी की लाठी खुल गई, रुपया आ गया 10,000 रुपया, ऐसे हाथ फैल हो जाए, ना ज्यादा सुख सह सकता ना ज्यादा दुख सह सकता। स्वर्गाधिक में वो सुख सहने की शक्ति है, सुख भोग है। नरकाधिक में दुख भोगने की शक्ति है, दुखदायी परिस्थिति है। ये मनुष्य शरीर तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, सुख दुख भोगने के लिए है ही नहीं। अधिक सुख हो तो मर जाए, दुख हो तो सुख तो मर जाए, क्यों सुख दुख भोगने के लिए है ही नहीं। साधन कर से भी साधन कर से मर जाए ये नहीं होगा भाई, साधन के लिए कोई जहर थोड़ा ही साधन है, इसे मरता नहीं है। वो उम्र बढ़ जाती है, उम्र भजन ध्यान करने से, भगवान के चिंतन करने से उम्र बढ़ जाती है। छठे स्कंद में अजामिलोपाख्यान आता है, अजामिल का अंत समय में नारायण नारायण नाम लिया। संतों ने कह दिया कि तेरे लड़के का नाम नारायण लगा दे। उनमें मोह था ज्यादा, जमराज के दूत आए, नारायण नारायण किया, पार्षद आ गए, नारायण चार पार्षद आ गए, जमदूतों को हटा दिया वहां से। देखा तो उस दिन से जागर बस फिर हरिद्वार गया, 6 महीने तक भजन ध्यान किया। तो अंत समय तो आ गया था जमराज लेने के लिए, पर भगवान के भजन करने की भीतर लालसा जगी तो भगवान ने उम्र बढ़ा दी, 6 महीने और जिया और भजन किया, फिर कल्याण हुआ। तो परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में चलने से नुकसान नहीं, लाभ ही लाभ होता है। लौकिक भी नुकसान नहीं तो लाभ होता है, और पारमिक लाभ तो होता ही है, उसमें तो गया ही है, उसमें नुकसान होता ही नहीं। तो सच्चे हृदय से परमात्म तत्व की प्राप्ति में लगने के लिए मानव शरीर मिला है। इस वास्ते परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए, भगवत दर्शन के लिए, भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए, तत्व ज्ञान प्राप्ति के लिए, जिन मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए ये मानव शरीर मिला है, तो इसकी इच्छा न करना ये नहीं, ये तो खास आवश्यकता है, इच्छा नहीं है। संसार के सुखों की, स्वर्ग आदि के भोगों की आज उत्तर विमलोकनों भोगनों सह सबन को त्याग, बेदर्श ज्ञाता मुनि कहता वैराग्य। तो लोग का सुख भी हम नहीं चाहते, हम तो भजन स्मरण चाहते हैं, सुख भोग के लिए ये शरीर है ही नहीं। तो भोग की इच्छा है, सुख आराम की है, मान बढ़ाई की है, ये इच्छा कामना है। तो गीता ने कामना के त्याग की बात कही है, तो ये सांसारिक कामना के त्याग की बात कही है, भजन स्मरण की कामना के त्याग की बात नहीं कही है। ऐसे सांसारिक सुख है, हम भोजन बढ़िया मिले, चीज भाव बढ़िया मिले, ये इच्छा से नहीं मिलता, ये तो प्रारब्ध के अनुसार मिलता है। एक बात और इसमें मार्मिक है कि सुखदायी परिस्थिति का त्याग कर सकते हैं, दुखदायी परिस्थिति का त्याग नहीं कर सकते। ये विशेष दोनों बातें विलक्षण है। सुखदायी परिस्थिति आई, आपके पास धन आया, संपत्ति आई, उसको आप दान कर सकते हो और त्याग करके साधु भाव बन गए सबको, तो त्याग कर सकते हो। पर बुखार आ गया उसको हम त्याग कर दें, ये नहीं कर सकते, वो तो भोगना पड़ेगा भाई, क्यों? पाप का फल है, पाप कर्मा है, पाप कर्म है वे है फौजदारी, और पुण्य है ये है दीवानी। तो आप भोगने को पड़े ही, भोगना ऐसा नहीं है, आ गया मिल गया, त्याग कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, छोड़ कर चल दो, रुपये आगे छोड़ चल दो, अथवा दान कर दो, आपकी मर्जी ऐसे कर सकते हो। पर बुखार आ गया, घाटा लग गया, लड़का मर गया, अब इसको त्याग कर दो, कैसे त्याग कर दोगे, लड़का जी जाएगा, वो नहीं होगा। इस वास्ते मनुष्य को कामना और ये आवश्यकता दोनों के भेद को समझना चाहिए। दोनों को भेद की बात आज बताई, परमात्म तत्व की प्राप्ति की आवश्यकता है, संसार के संग्रह और सुभोग की कामना है। तो कामना का त्याग करना है, आवश्यकता की पूर्ति होती है, कामना की पूर्ति कभी नहीं होगी, तब कभी त्याग करना पड़ेगा, ये त्यागने की बात है। नारायण नारायण नारायण।